ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भागवतम सप्तम स्कंद अध्याय 11 श्लोक संख्या 25 और इस अध्याय का नाम है पूर्ण समास चातुर्वर्ण। स्त्रीणां च पतिदेवानां तत शुश्रूषा अनुकूलता तत बंधुस अनुवृत्ति नित्यम तत्व्रत धारणम। स्त्रीणां च पतिदेवानां तत शुश्रूषानुकूलता तत बंधुस अनुवृत्तिश्च नित्यं तत्प्रतधारणम्। स्त्रीणां च पतिदेवानां तत शुश्रूषानुकूलता तत बंधुसंवृत्तिश्च नित्यं तत्प्रतधारणम्। स्त्रीणां च पतिदेवानां तत शुश्रूषानुकूलता तद बंधुसंवृत्तिश्च नित्यं तद व्रतधारणम्। एक शांत गृहस्थ जीवन के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि स्त्री अपने पति के व्रत का पालन करे। पति के व्रत से किसी प्रकार का असमंजस पारिवारिक जीवन का उच्छेद कर देगा। इस प्रसंग में चाणक्य पंडित का उपदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है। दंपतयो कलहो नास्ति तत्र श्री स्वयं आगतः। जहाँ पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता वहाँ भाग्य की देवी लक्ष्मी स्वयं उस घर में आती है। स्त्री की शिक्षा इस श्लोक में दिए संकेतों के अनुसार होनी चाहिए। पतिव्रता स्त्री के लिए मूल सिद्धांत यही है कि वह सदा पति के अनुकूल रहे। भगवद गीता में कहा गया है कि स्त्रीषु दुष्टाश वार्षय जायते वर्ण संकरः। यदि स्त्रियां दूषित हो जाती हैं तो वर्ण संकर संतानें होती हैं। आधुनिक शब्दावली में वर्णशंकर तो हिप्पी हैं जो विधि विधानों को नहीं मानते। दूसरी व्याख्या यह है कि जब जनता वर्णशंकर होती है तो कोई यह नहीं जान पाता कि कौन किस स्तर पर है। वर्णाश्रम प्रणाली समाज को वैज्ञानिक ढंग से चार आश्रम में विभाजित करती है, किंतु वर्णशंकर समाज में ऐसा भेद नहीं दिखाता और कोई यह नहीं जान सकता कि कौन क्या है। ऐसे समाज में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र में अंतर कर पाना कठिन होता है। शांति तथा प्रसन्नता के लिए वर्णाश्रम प्रणाली का आरंभ भौतिक जगत में किया जाना चाहिए। जगत में मनुष्य के कार्यकलापों के लक्षण सुस्पष्ट होने चाहिए। और उसी प्रकार उसी के अनुसार उसको शिक्षा दी जानी चाहिए, तब आध्यात्मिक प्रगति स्वतः संभव हो जाएगी। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया च श्रोणृतम इह तस्मै श्री गुरुवे। बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है और नारद जी युधिष्ठिर महाराज से बता रहे हैं कि समाज में किस तरह से हमें जीना चाहिए। तो चार चातुर्वर्ण में सिस्टम भगवान गीता बताते हैं, चार प्रकार के वर्ण और आश्रम होते हैं और इसके अनुसार ही जीना चाहिए अपना जीवन। लेकिन समस्या इस बात की है, भगवान की कोई बात मानता ही नहीं। ये सच है कि नहीं सच है? न तो कोई भागवत पढ़ता है, न कोई गीता पढ़ता है, न कोई भगवान की बात स्वीकार करता है, सब मनमानी कार्य करते हैं। ये शिक्षा कहाँ देनी चाहिए? स्कूलों में, पाठशालाओं में ये शिक्षा देनी चाहिए, लेकिन ये शिक्षा नहीं दी जा रही। भाई समाज कैसे सुधरेगा जब समाज को ये शिक्षा दी जाएगी? अब ये शिक्षा दी जा रही है कि आपको वर्णशंकर ही रहना है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई मतलब नहीं है, अराज ही हो रहा है। समाज के लोग पूरे विश्व में क्यों परेशान है? उनका परेशानी का एक ही कारण है कि जिन्होंने इस संसार बनाया है उनके अनुसार कोई चल नहीं रहा। ये हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या है। जैसे गीता भगवान कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, है ना, हमके बहुत शुद्ध सात्विक आहार पत्र पुष्प फल और जल लेना चाहिए मनुष्यों के लिए, लेकिन 90% लोग इस चीज को स्वीकार नहीं करते, अंडम मटनम चिकनम खाते हैं, राइट। समस्या यही है कि भगवान जो चाहते हैं वो हम नहीं करना चाहते हैं। भगवान तो चाहते हैं कि मन मनाभ मद भक्त मध्याजिमा नमस्कार, अपना मन मेरे में लगाओ, लेकिन हमारा मन नहीं लगता। हमारा मन लगता है सिनेमा में, है ना, दूसरे अन्य कारण। आजकल के बच्चों को कृष्ण के बारे में, चैतन्य महाप्रभु के बारे में उतना नहीं मालूम है जितना शाहरुख खान के बारे में मालूम है, फिल्म स्टार के बारे में, क्रिकेट स्टार के बारे में पागल हो जाते हैं। सच है कि नहीं सच है? यही सच है। तो शिक्षा, वैदिक शिक्षा बहुत ही आवश्यक है। अब आप कितनी बढ़िया स्त्रियों के बारे में कितनी सुंदर बात यहाँ बताई गई है कि पति की सेवा करना, अपने पति के अनुकूल रहना, पति के संबंधियों तथा मित्रों के प्रति समान रूप से अनुकूल रहना तथा पति के व्रतों का पालन करना, ये चार नियम पतिव्रता स्त्री के लिए पालनी है। ध्यान है ये उन स्त्रियों के लिए है जो पतिव्रता है। तो स्त्री को पतिव्रता ही होना चाहिए, ऐसा शास्त्र एक कहता है कि स्त्री के बारे में चाणक पंडित प्रभुपाद जी भी समझाए हैं, चाणक पंडित का उदाहरण देकर के, कि स्त्रियों को कभी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए, इंडिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए, उन्हें किसी न किसी के आश्रित रहना ही चाहिए। तो बताया गया है कि शादी के पहले तक वो अपने माता पिता के साथ रहे, लेकिन जैसे युवावस्था में प्रवेश करती है स्त्री उसको तुरंत अपने पति के साथ में रहना चाहिए, है ना। और जब पति, मान लो पति नहीं रहता, तो उसको अपने बड़े बेटे के साथ में रहना चाहिए। ये नियम है कि उसे किसी न किसी के संरक्षण में रहना ही चाहिए, एकदम निश्चिंत होकर के नहीं रहना चाहिए, ऐसा सिस्टम कि उसकी अच्छाई के लिए है और बहुत संकर उत्पन्न नहीं होंगे, है ना, इसके लिए है। लेकिन समाज में ऐसा नहीं हो रहा है। और पति की सेवा करना, आजकल तो पति की सेवा करना बड़ा मुश्किल काम हो गया है। सेवा कई प्रकार का होता है, क्योंकि जो प्रेम होना चाहिए वास्तव में वो प्रेम नहीं है। जितने शास्त्र हैं आप देखेंगे, ऐसी ऐसी स्त्रियां हुई हैं शास्त्रों में बताया गया है कि जिन्होंने पतिव्रता, जिनको बताया गया कि इनसे बड़ी कोई स्त्री नहीं पति। जैसे जब ऐसी बात आती है तो सबसे पहले किसका नाम आता है? सीता जी का नाम आता है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। तो जब शादी, जब विवाह पद्धति के द्वारा जब शादी होती है तो उसमें सात वचन दोनों को लिया जाता है, पति के लिए भी और पत्नी के लिए भी। इसे कहते हैं विवाह संस्कार। भगवान राम का जब विवाह हो रहा था, चारों भाई का विवाह हुआ वहां पे, तो उसी जिस विधि विधान से शादी हुई थी वही परंपरा अभी भी चली आ रही। लेकिन धीरे धीरे ये विवाह की जो वैदिक परंपरा है धीरे धीरे क्या होती है, समाप्त होती जा रही। आजकल तो लोग 10 मिनट में शादी कर लेते हैं, आधे घंटे में, जितना उनके प्रार्थ उसके हिसाब से शादी होती है। अब वो सिस्टम धीरे धीरे खत्म हो रहा है, सब फॉर्मेलिटी पूरी होती जा रही है। मुझे याद है कि 63 नंबर जब हमारे राधा राधिका कमंदी जो 63 रोड नंबर में था ना, वहाँ पे एक शादी तब मैं प्रेजेंट था हुई थी मेरे सामने। पति और लड़का लड़की सर मुश्किल से 10 लोग आए थे। कितने लोग आए थे? 10 लोग आए थे, 5 उनकी तरफ, 5 उनकी तरफ से। और जहाँ पे वो हॉल है ना, हॉल था वहाँ पे, वहाँ पे भगवान जगन्नाथ जी, क्योंकि वो लोग रात को आए थे, भगवान जगन्नाथ जी के सामने ही ऐसे वरमाला किया और शादी कर ली। माने मुश्किल से 10 मिनट लगा होगा, मैं था वहाँ। ऐसी भी शादी, समस्या ये है कि हम वैदिक पद्धति के अनुसार अपना जीवन नहीं जी रहे हैं। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम इसीलिए कहा गया कि एक पति के रूप में कैसे रहना चाहिए, सीता जी ने एक पत्नी का कैसे रहना चाहिए, इनसे में क्या करना चाहिए, शिक्षा लेना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आज पूरे घर घर में क्यों उनको सम्मान दिया जाता है, सबसे लोग सीताराम क्यों मानते, इसीलिए क्योंकि वहां पे एक मर्यादा है ना। भगवान राम ने भी पूरी मर्यादा का निर्वहन किया। एक पति को उसी प्रकार से होना चाहिए और पत्नी को भी उसी प्रकार से होना चाहिए, जैसा कि इसमें बताया गया है कि वो पति की सेवा करें। जब वनवास की बात आई तो सीता जी भी तैयार हो जाती है भगवान के साथ जाने के लिए। यहाँ बड़ा सुंदर प्रसंग है। सीता जी ने कहा कि देखिए, जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी माँ ने यही समझाया था कि एक पल के लिए भी पति का आश्रय नहीं छोड़ना है, क्योंकि पति की सेवा में ही तुम्हारी क्या है, सारी खुशी है। उनके सुख में भी, उनके दुख में भी तुम्हें सदैव साथ रहना है, छाया की तरह। जैसे छाया साथ रहती है उसे तुम्हें उनके अनुसार चलना चाहिए। बड़ी शिक्षा दी है। और जब वनवास की बात आई तो सीता जी ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। भगवान राम ने कहा कि देखो, जंगल बहुत भयानक होता है, वहाँ पथरीले और कटीले रास्ते होते हैं, और तुम्हारे पांव जमीन पर कैसे चलेंगे, क्योंकि वहाँ पे कांटे चुभ सकते हैं, कंकर होते हैं, और इसलिए हम नहीं चाहते कि तुम हमारे साथ कहाँ चलो, मेरे साथ ना, क्योंकि 14 साल का जो वनवास मिला है मुझे मिला है, आपके लिए नहीं मिला है। ऐसा न सुना। और कहे कि तुम्हारी सबसे सेवा है कि अपनी जो सास माता है था कौशल्या की, उनकी सेवा करना। मर्जा दशर एक ससुर हैं, उनकी सेवा करना है ना, आप उनकी सेवा में। लेकिन सीता जी ने कहा कि नहीं नहीं, पत्नी का एक कर्तव्य होता है कि पति के साथ रहना। अगर आप वनवास जा रहे हैं, कष्ट उठा रहे हैं और मैं यहाँ महल में आराम से रहूंगी, ये मेरे लिए धिक्कार है। जिसका पति कठिनाई में झेले और उसकी पत्नी आराम की सिया पे कैसे लड़ सकती, ये संभव नहीं है। मैंने इसलिए मैं आपके साथ, आप जहाँ चलेंगे मैं आपके साथ रहूँगी। भगवान ने कहा वहाँ राक्षस होते हैं, भयानक जानवर होते हैं, कहे कि जब आप हैं तो हमें किसी की डर नहीं रहेगी, है आप आगे आगे चलेंगे और पीछे पीछे मैं चलूँगी। रही कांटा गड़ने की बात, जहाँ आप पाँव रखेंगे वहाँ मेरा पाँव पड़ेगा, अर्थात आप आगे चलेंगे, जैसे आप चलेंगे वैसे मैं भी चलूँगी। जब इस तरह से कहा तो भगवान राम जो है क्या तैयार हो गए। इससे शिक्षा मिलती है कि पति और पत्नी का जो बंधन होता है वो बहुत पवित्र होता है, और ऐसा प्यार तभी होता है, है ना, जब वास्तव में हृदय से दोनों एक दूसरे को क्या करें, स्वीकार करें। ये बड़ी समस्या है, लेकिन इस कलयुग में ऐसी बात नहीं है, है ना। कलयुग में क्या हो गया है कि कोई एक दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज घर घर कहानी क्या है कि अगर पत्नी के घर से कोई आ जाए तो पत्नी को बड़ा अच्छा लगता है, और पति के घर से कोई संबंधी आ जाए तो उसको अच्छा नहीं लगता। ये सच है कि नहीं सच है? वास्तव में यही सच है। हमेशा पत्नी जो है अपने परिवार वालों के प्रति सकारात्मक सोच रखती है, और पति के जो परिवार के लोग हैं उनके प्रति क्या रखती है, नकारात्मक सोच। लेकिन शिक्षा दी जाती है कि आपको पति के जो संबंधी हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके प्रति आपको वही भाव रखना चाहिए जो भाव आप अपने परिवार के रखते हैं, असल में। लेकिन ये तभी समूह है जब दोनों के हृदय क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, सारी परेशानी का जड़ यही है कि जैसे झगड़ा, यहाँ चाणक्य पंडित कहते हैं कि दंपतो कलह नास्ति तत्र संगः, जहाँ पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता वहाँ भाग की लक्ष्मी स्वयं आती है। और आज हर घर की कहानी है कि झगड़ा ही होता है, छोटी छोटी बात पे झगड़ा होता है, हम किसी बात पे सहमत असहमत बनी रहते हैं हमेशा। पति की अपने रास्ते चल रहा है, पत्नी भी क्या करती है, क्या करे, जब माने दोनों को समझना चाहिए, क्योंकि पति और पत्नी ये दोनों को इस चीज को समझना चाहिए। आप समझिए ना, ये बोल जाए कि हम आपका केयर करें, आप हमारे केयर करें, आप हमारे विचारों का ध्यान रखें, हम आपके विचारों का ध्यान रखें, ये बहुत आवश्यक। तो ये शांत गृह जीवन के अत्यंत महत्वपूर्ण है कि स्त्री अपने पति के व्रत का पालन करे, क्योंकि स्त्रियों को की जो एक आदत होती है, चाणक्य पंडित या मनुष्य संहिता बताया गया है कि स्त्री हमेशा तीन से दिमाग उसका चलता है, सास करता है, अपने पति के साथ रहती भी है और दूसरे के बारे में सोचती भी रहती है। ये सास कथा मैं नहीं कर रहा, बताया गया, हमेशा उसका दिमाग कहीं ना कहीं चलता है, स्थिर बुद्धि नहीं रहती। इसलिए स्त्रियों को स्थिर बुद्धि करने के लिए बताया गया है कि जब आपकी शादी हो जाती है तो आपको फिर दूसरा सोच नहीं रखना चाहिए, सिर्फ एक ही पति, एक ही पुरुष के बारे में हमको क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए। और पति का भी कर्तव्य होता है कि वो भी सिर्फ शादी के बाद फिर अपनी पत्नी के अलावा और किसी के प्रति उसके हृदय में जगह नहीं होनी चाहिए, एहसास करता है। इसका सबसे सुंदर उदाहरण कौन है, भगवान राम है और सीता माता जी। रावण ने कितना प्रयास किया, रावण तो क्या चाहता था, वो सीता जी का तो चाहता था, रावण यही चाहता है ना, लेकिन सीता जी ने जरा सा भी जब बात करती थी तिनके का सहारा लेकर के, और देखना भी पसंद नहीं करती है, और इतने इतनी सारी डायलॉग प्रेम भरे रावण ने बोले, लेकिन सीता जी ने ठीक उसका विपरीत जवाब दिया। इससे में शिक्षा मिलती है, अनुसुईया जी ने भी उनको बहुत शिक्षा दी, सिखाया, लेकिन सीता जी सारे कष्ट सहन के उनके साथ। ऐसा स्त्री का स्वभाव इस तरह से होना चाहिए कि पति हमारा क्या है, सर्वोच्च है, ये होना चाहिए। ऐसे एक और थी सावित्री, वो भी पतिव्रता उनका नाम था, वो इतनी पतिव्रता थी कि जब उनके पति सत्यवान की मृत्यु हो गई तो उन्होंने अपने तपस्या सत्यत के बल पर अपने पति को वापस ला दिया जमराज को, जमराज को झुकना पड़ा। जलंधर, जलंधर क्यों बच रहा था, क्योंकि उसकी जो पत्नी थी वृंदा है ना, वो कृष्ण की महान भक्ति थी और पतिव्रता थी। भक्ति और पतिव्रता के बल पर उनके पति जलंधर को कोई मार नहीं सकता था, है ना। अंत में जो है भगवान ने उनका सत्यत्व भंग किया, है ना, वृंदा का, तब जाकर के उसको मार पाया। तो सत्यत्व में कितनी ताकत होती है ये पता होना चाहिए स्त्री को, ऐसा था। तो ही शास्त्र कहता है कि हमारी शुद्धता अपने हाथ में है, हम चाहे तो पवित्र रह सकते हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अगर हम नहीं रह सकते तो अपवित्र तो है। हमारे ऊपर है कि हम कितना अपने आप को शुद्ध रखते हैं, हम अपने आप कितना पवित्र रखते हैं, हमारे ऊपर है। इसीलिए दीक्षा के समय चार नियम तक पर स्त्री पर पुरुष गमन नहीं करना चाहिए। नियम, नियम सिर्फ नियम नहीं बनाएगा, इसका हमें क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। तो समाज तभी स्वच्छता से रहेगा जब हम वैदिक शिक्षा को अपने जीवन में अपनाएंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार वर्ण हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, बाप और संन्यास, ये चार आश्रम हैं। तो चातुर्वर्ण न्यास सिस्टम, इसके अनुसार पूरे समाज को क्या करना चाहिए, चलना चाहिए। हम सबके लिए ये बहुत आवश्यक है। बताया गया है कि किस तरह से आधुनिक जो शब्द है, यहां बर्णशंकर की बात होती है, बर्णशंकर तभी उत्पन्न होता है जब हम वैदिक जीवन के अनुसार अपना जीवन नहीं जीते। स्त्रियां जो होती है वो स्वतंत्र हो जाती है। जैसे आजकल देखा गया है कि कोई स्त्री अगर विधवा हो जाती है, राइट, है ना, लेकिन वो इतना मेकअप करती है पता नहीं चलता कि विधवा है कि सधवा है, है ना। एक कलयुग का प्रभाव है, जो पहले जिसका पति अगर शरीर छोड़ देता था तो पता चलता था कि इसका आदमी नहीं है, है ना, और हमेशा वो अलग ही उसका जीवन होता था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, है ना? आजकल तो पता नहीं चलता, जो विधवाएं हैं वो भी बहुत फैशन से रहती है, पता नहीं चलता, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, सब चल रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये जो समाज है दूषित नहीं होना चाहिए। इसीलिए प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो वहाँ पे यही देखा, हिप्पीज, वहाँ पे प्रभुपाद ने देखा कई ऐसे लोग आते थे कि तीन भरे में तीन चार अदला बदली करते थे, लड़कियों के साथ आते थे, लड़का लड़की, लड़की लड़का, है ना, और वही लड़का आता था फिर दूसरे लड़की के साथ, वही लड़की आती दूसरे लड़का से। प्रभुपाद जी क्या, यहाँ तो कोई सिस्टम ही नहीं। तब प्रभुपाद जी ने अमेरिका में कहा कि नहीं 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 नहीं, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, अगर तुम्हें मेरा शिष्य बनना है तो पहले इस सिस्टम बंद करना पड़ेगा। पाश्चात्य जो सिस्टम है बंद करके आध्यात्मिक सिस्टम का है, तुम्हें शादी करना चाहिए। अरे एक बार शादी कर लिया तो फिर दूसरी पर नजर नहीं करना चाहिए। इसलिए मुकुंद गोस्वामी महाराज, मुकुंद दत्त, मुकुंद दास थे, उन्होंने उनकी शादी किससे कराई, जानकी से कराई, जानकी से। वो पहले इन्हीं लोगों के साथ शादी करा के, ये सब फर्स्ट बैच के थे, तो कई शादी। तो प्रभुपाद जी ने वहां पे शादी करना शुरू किया अपने भक्तों की, कि अब तुम गृहस्थ आश्रम में रख करके और भक्ति करो, तो ऐसा नहीं चलेगा, है ना। इस समाज अगर शुद्धता से रखना है तो पवित्रता स्वयं से स्टार्ट होनी चाहिए। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने कि आप हमारे आश्रम रह सकते हैं, अगर आप गृहस्थ बनना चाहते हैं तो गृहस्थ आश्रम में रह करके गृहस्थ के नियमों का पालन करते हुए आप क्या करिए, भगवान की भक्ति कर सकते हैं। आप ब्रह्मचर्य जीवन में रहना चाहते हैं, आप ब्रह्मचर्य जीवन में, लेकिन ब्रह्मचर्य नियम के जो नियम है उसको पालन करना चाहिए। बालपस्त में रहना चाहिए तो बालपस्त का जो नियम है उसको पालना चाहिए, और संन्यास का जो कठिन नियम है अगर संन्यास रहना चाहे करना चाहिए। तो ये चातुर्वर्ण में आश्रम का संस्कार है। तो चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, हमें सबके लिए नियम का पालन करना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ पत्नियों के लिए बताया गया है, पति मनमानी करे ऐसा भी नहीं, उनके लिए भी नियम है। इसीलिए जो सात वचन बजा देते हैं ये दोनों के लिए होते हैं कि तुम्हें क्या करना है और हमें क्या करना है। इस सात वचन का हमेशा क्या करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। ऑनेस्टी इसी में है, ईमानदारी इसी में है। अगर हम ईमानदार नहीं है अपने प्रति तो दूसरों के प्रति वो व्यक्ति कैसे ईमानदार हो सकता है। तो हर पत्नी को अपने पति के प्रति ईमानदार होना चाहिए और पति को भी अपनी पत्नी के प्रति क्या करना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। नहीं तो समस्या क्या होती है, पति चाहता है कि हमारी पत्नी पतिव्रता रहे और वो हम जो मर्जी नहीं करते रहे, यही गलत है नहीं। क्योंकि आज के समाज में सब कुछ चल रहा है, जो नहीं चलना चाहिए चल रहा है, क्योंकि शास्त्रों की बात को कोई मान नहीं रहा है। तो हम लोगों का कर्तव्य है कि ये जो प्रचार है इसका नहीं। तो प्रभुपाद जी ने वैदिक सिस्टम देखो पाश्चात्य देशों फैला था, और यहाँ भी प्रभुपाद जी चाहते थे कि आप लोग जो है गृहस्थ आश्रम में रहना चाहते तो रहिए, लेकिन गृहनिधि बनकर के न रहिए, क्योंकि केंद्र में किसको बनाइए, कृष्ण को। जो गृहस्थ में भी तो होता है, एक गृहस्थ आश्रम में होता है, एक गृहनिधि होता है और गृहस्थ होता है। गृहनिधि उसे कहते हैं जो शादी तो कर लेता है, गृहस्थ में रहता है, लेकिन भगवान के नियम के अनुसार वैदिक नियम के अनुसार अपने जीवन को नहीं जीता। उसके केंद्र में कृष्ण की भक्ति नहीं रहती। हाँ, जो मर्जी खाता है, जो मर्जी पीता है, वो गृहस्थ। तो ज्यादातर लोग गृहस्थ के ही समझते कि शादी करने लायक क्या है, गृहस्थी है। नहीं, ज्यादातर लोग क्या होते हैं, गृहमेदी होते हैं। गृहस्थ आश्रम वो आश्रम होता है जहाँ पे भगवान का सुंदर आल्टर हो, घर में भगवान की पूजा हो, भगवान को सुबह दोपहर शाम कम से कम 3 बार उनका भोग लगे, अब पूरा परिवार प्रसाद ग्रहण करे, है ना। और जो व्रत बताए गए हैं गृहस्थ आश्रम के, उस नियम का जो पालन करता है वो है गृहस्थ आश्रम, अन्यथा गृहमेदी आश्रम। तो ज्यादातर लोग क्या होते हैं, गृहमेदी होते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा गृहस्थ आश्रम में रहना है तो गृहस्थ आश्रम के जो नियम है उसको हमें पालन करना चाहिए। अभी ये जो प्रसंग चल रहा है, आप लोग जो भक्तों से अनुरोध है कि ये पूरा चैप्टर जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, एक एक श्लोक आगे आएगा आदर्श पारिवारिक जीवन, हमारा पूरा परिवार पति पत्नी बच्चे सब कैसे खुश रहें, कैसे आनंद में रहें, ये सब आगे चल करके बताया गया, आगे अध्याय बताया गया है। तो ये जो हमारा संस्कार है इसीलिए शिक्षा दी जाती है कि हम इसको अपने जीवन में अपनाएं। तो ये जो असामाजिक तत्व है, असामाजिक तत्व जो पूरे समाज फैला हुआ है, तो एक खान पान पर इसका बड़ा असर पड़ता है। ये जान लीजिए, आपका मन शुद्ध तब होगा जब आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो एक बहुत सुंदर सिस्टम बताया गया है रूप गोस्वामी जी के द्वारा। उन्होंने बताया है कि जीवा बेगम उदर पस्त बेगम, वाचो बेगम मनुष्य क्रोध बेगम, जीवा बेगम उदर पस्त बेगम। अगर आप गृहस्थ माने जो चारों आश्रम को कंट्रोल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने वाणी को कंट्रोल करिए। इंद्रियां कैसे कंट्रोल होती है, हम इधर क्यों भागते हैं, क्योंकि हमारी इंद्रियां कंट्रोल नहीं होती। तो इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है वाणी। आप जानते हैं वाणी का जो है, वाणी से अर्थात बोलने से आदमी जूता भी खाता है और वाणी से फूलों का हार भी पहनता है। सारा खेल क्या है, बोलने का। प्रभुपाद बोलते थे अगर कोई प्रेम से मीठे शब्द नहीं बोल सकता तो वो कुछ कर ही नहीं सकता, कि बोलने में तो कुछ लगता ही नहीं, बोलने में तो कुछ नहीं लगता। तो अगर आप मीठा बोल नहीं सकते तो आप क्या कर सकते, और जानते हैं कि जो झगड़ा लड़ाई झगड़ा होता है, चाहे पारिवारिक हो, चाहे रिश्तेदारों के बीच हो, किसी के प्रति हो, वाणी की वजह से कोई प्रेम से बोलता ही नहीं, छोटी छोटी बात पे गाली देख करके बात करते हैं, राइट? छोटी सी बात पे, छोटी छोटी बात पे गाली मारपीट से हो जाता है। क्यों? वाणी पर कंट्रोल नहीं है। वाणी की भी क्या होती है? तपस्या होती है। भगवान गीता में कहते हैं ये वाणी जो है उसकी भी तपस्या होती है। आप जब भी बोले सत्य बोले, लेकिन सत्य भी बड़े प्रेस ढंग से बोले, ऐसा सत्य ना बोले कि उसको अच्छा ही ना लगे, राइट? सत्य बोले लेकिन ऐसा सत्य बोले जो प्रिय हो। एक कैसा यह बोली कला भगवान की तरह। भगवान जब बोलते हैं तो सत्य बोलते हैं, लेकिन बड़े मीठे ढंग से बोलते हैं। भगवान राम से और कृष्ण से बोलने की कला सीखिए। आप खुद सोचिए कि भगवान राम ने रावण तक को मार डाला, एक शब्द अपशब्द नहीं बोले, भगवान कहीं गाली नहीं दी रावण को। सोचने वाली बात। आज हम लोग को कोई छोटी सी चीज चुरा लेता हूं, गाली देकर मारपीट लड़ाई झगड़ा कितना कर दे, राइट? लेकिन भगवान राम की सीता को हड़क लिया, लेकिन भगवान गाली नहीं, अपशब्द नहीं की। सोचने वाली बात। हनुमान जी पूरी लंका चलाते हैं, समान पीठे, लेकिन हनुमान जी किसी गाली नहीं दी रहा, मारा पीटा जरूर, गाली अपशब्द नहीं बोले। हम क्या करते हैं? अपशब्द, क्योंकि वाणी की तपस्या हमारे अंदर नहीं है। इसलिए अपनी वाणी पर कंट्रोल करना चाहिए। और जीवा पर कंट्रोल करना बहुत काम है। जीवा का दो काम है, बोलना और स्वाद चखना। आज जीवा पर कंट्रोल न होने का कारण लोग क्या करते हैं? मांसाहार कर रहे हैं, दुनिया भर की गंदगी खा रहे हैं। ये जीवा पर कंट्रोल नहीं है, क्योंकि ध्यान रखिए कि हमारी वाणी, जीवा और पेट और हमारा जो जेंटिल है, ये तीनों एक ही लाइन में होते हैं। अगर हमारा एक कंट्रोल हो जाएगा और पेट कंट्रोल हो जाएगा, तो नीचे की जो जनेन्द्रियाँ हैं अपने आप क्या हो जाती? कंट्रोल हो जाती है। जननेन्द्रिया पर कंट्रोल न होने की वजह से ये बड़ संकर उत्पन्न हो रहे हैं। ये जो गृहस्थ जीवन में कैसे जीवन जीना चाहिए, कि शास्त्र बताता है कि हमें संबंध, पति पत्नी का संबंध तभी बनना चाहिए जब हमें संतान की इच्छा हो। आगे चल के बताएंगे, शास्त्र ये आएगा कि हमें तभी संबंध बनाना चाहिए जब हमें संतान की इच्छा हो, ये बताया गया है। अनैत संबंध नहीं बनाना चाहिए, ऐसा बताएगा। लेकिन कौन मानता है? शास्त्र को कोई पढ़ता ही नहीं। यहाँ तक बहुत सारी चीज बताए हैं कि गर्भाधान संस्कार का समय बताया गया है कि अगर आप पति पाक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि गर्भाधान संस्कार क्या होता है। इसलिए जब ब्राह्मण दीक्षा लेता है तो गृहस्थ होता है, कांग्रेगेशन ड्यूटी होता है, तो उसको समझाया जाता है। ये बात अकेले में बताई जाती है। कहने को कि शास्त्र में सब कुछ बताया गया है, किसके लिए? हमारी शुद्धता के लिए, हमारी अच्छाई के लिए, ये सब बताया गया, आगे आएगा। तो कहने का मतलब है कि हम शुद्ध तभी होंगे जब हम अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करने की कला सीखेंगे। और सबसे बड़ी जरूरत है जीवा। ये जीवा का कंट्रोल, जानते हैं एक जीवा शब्द से ही महाभारत का युद्ध हुआ। अगर द्रौपदी ने जो ये बोल दिया कि अंधे के बेटा अंधा ही होता है, एक डायलॉग से क्या हुआ? इतना बड़ा महाभारत होता है। अंधे शब्द में बहुत बड़ी ताकत होती है, शब्द में बहुत बड़ी ताकत है जीवा। इसलिए बोलने से पहले सोच समझ के बोलना बताया गया। ऐसे नहीं कि जो चाह बोल दिया, क्योंकि एक बार आप जो शब्द निकल गया फिर उसको आप वापस नहीं कर सकते, है ना? इसीलिए कम बोलिए, लेकिन जब भी बोलिए तो बहुत प्रिय बोलिए और सत्य बोलिए, लेकिन सत्य को बड़े मीठे ढंग से बोलिए, क्योंकि बोलना भी एक क्या है? कला है। तो ये जब हमारा जीवा बेगम उधर उपस्थ, अगर जीवा और उधर पेट सब कंट्रोल रहेगा तो उपस्थ भी अपने आप क्या हो जाएगा? कंट्रोल होगा। अगर हमने अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया तो जो एक पति पत्नी है जो समस्या है है ना, जो पतिव्रता है धन अपने आप क्या हो जाएगा, पालन हो जाएगा। ये जो पतिव्रता और पत्नी व्रता ये तभी पालन होगा जब हमारी इंद्रियां क्या होंगी, कंट्रोल में रहेंगे। लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, क्यों, कि हमारी इंद्रियां क्या है, हमारे कंट्रोल में है। इंद्रियां तभी कंट्रोल होंगी जब हम भक्तों का क्या करेंगे, संगति करेंगे, चार नियम का पालन करेंगे और हरे कृष्ण महामंत्र का क्या करेंगे, जप करेंगे, नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और जीवा की तृप्ति के लिए हमें सिर्फ भगवान का प्रसाद लेना चाहिए, अशुद्ध सात्विक जो आहार है उसको लेना चाहिए, क्योंकि उसी से हमारा मन क्या होगा और क्या रहेगा, सात्विक मन रहेगा, सत्वगुण में रहेगा। तामसिक चीजें इसीलिए मना कर, क्योंकि आदमी जैसा खाता है उसका विचार वैसे बनता है ना। जितने गलत विचार लोग वाले होते हैं वो गंदी चीजें खाते हैं, है ना, क्योंकि उससे उत्तेजना बढ़ती है, राइट। इसीलिए जो वैष्णव होते हैं उनको ये चीजें मना की जाती हैं, जैसे लहसुन है, प्याज है, मसूर की दाल है, उड़द की दाल है ना, अंडा है, मानी जितनी चीजें हैं ये क्या तामसिक है, ये हमारे तमोगुण को क्या करती है, बढ़ाती है। जब आदमी का तमोगुण बढ़ता है तभी वो अवैध संबंध की ओर निशारा करता है ना, अपनी उसकी इंद्रियां क्या होती है, कंट्रोल में नहीं रहती। तो हम ऐसी चीज खाएं क्यों जो उत्तेजित करे, राइट। तो इसलिए बताया गया है कि हमें ऐसा आहार करना चाहिए जो सात्विक होता है, सात्विक आहार, पत्रम पुष्पम फलम, बड़ा सादा खाना, प्रसाद पहले भगवान को भोग लगाइए और उसके बाद प्रसाद के रूप में खाइए। ये बताएगा हमारी इंद्रियां कंट्रोल में होगी, अपना सारा सिस्टम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि खाना पीना रहना सोना है ना, ये बिल्कुल शास्त्रों के आधार पर होना चाहिए। जैसे सुबह 3:30 हमारे भक्त लोग उठ जाते हैं, 3:30 उठना शुरू करते हैं, 4:30 मंगल आरती करते हैं, 9:00 प्रसाद लेते हैं, लेकिन 3:30 से 9:00 तक पूरा उनका आध्यात्मिक कार्यक्रम होता है। तो एक किसके लिए है, इसी से हमारी इंद्रियां क्या होंगी, कंट्रोल होंगी, क्योंकि मन चंचल होता है। अब मन को महामंत्र ही कंट्रोल कर सकता है, मन त्रायते इत मंत्र, जो मन को बस में करता है उसको मंत्र कहते हैं। ऐ तो महामंत्र है, जब हरे कृष्ण महामंत्र का हम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, भक्तों के संग बैठ करके जब करते हैं, तो हमारा मन क्या होता है, एकाग्र होता है। और कभी कभी आप देखेंगे कि जब आप जब करते रहते हैं मन इधर उधर भागने का प्रयास करता है, तो हमारे भक्त कम नहीं है, वैसे झटकते रहते हैं कि नहीं नहीं हमें जब करने करना है ना, ऐसे कर हरे कृष्ण कृष्ण, क्योंकि मन भटकना चाहता है। हम नहीं चाहते कि हमारा मन जो है भटके, वो कंसंट्रेट रहे, क्योंकि मन का स्वभाव है हमेशा भगवान से दूर रखना। ये माया इतनी चालाक है, मन को बहकाए रखती है, क्योंकि हमारा मन हम पता नहीं कितनी योनियों में रह के तब मनुष्य शरीर मिला है, अर्थात पशु की योनि में, पक्षी की योनि में हम रह करके तब मनुष्य योनि में आए। तो मनुष्य योनि में आते ही मन को बस में करने की बात कही जाती है, लेकिन पक्षी योनि में यानी पशु योनि में जब हम रहते हैं तो कोई ये शिक्षा नहीं दी जाती अपना मन कंट्रोल कर। तो चूंकि मन का आदत है अपने मनमर्जी करना, और जब चूंकि मनुष्य शरीर में आ गया है तो एक कहना पड़ता है, ऐसा नहीं, मन की आदत है नहीं सुनने की कि वो मन मालिक करता है। ये जे आप समझिए मैं क्या बताना चाहूँ, समझाने के कि मनुष्य को ही जब मनुष्य शरीर में आप आ जाते हैं, आत्मा मन बुद्धि अहंकार साथ रहती है, तो जब हम मनुष्य शरीर में आ जाते हैं तभी ये शिक्षा मिलती है। और चूंकि इसकी आदत नहीं रही है ऐसा करने की, इसलिए जल्दी सुनता नहीं है, राइट। लेकिन हमको क्या करता है, जबरदस्ती करना ही पड़ता है, इसे अभ्यास करना है। ये भक्ति योग का क्या करना चाहिए, हमें हमेशा अभ्यास करता रहना चाहिए, कि यही अभ्यास करते रहेंगे तब जाकर के अंत में आप भगवान को याद आएंगे, नहीं तो मन इतना खराब है कि अंत समय भी वो माया में फंस जाता है। तो हमारी जितनी प्रैक्टिस है सुबह की साधना की, सबकी यही प्रैक्टिस है, किसी न किसी तरह से हमारा मन इस तरह से भगवान में एकाग्र हो जाए कि जब अंत समय आए तो हमारे मन जीवा से क्या निकले, प्रभु का नाम ही निकले, तभी हमारा क्या हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। और हम इसी मन को एकाग्र के लिए इस सारी साधना, जितना भक्ति योग की प्रोसेस हम अपनाते हैं, सिर्फ मन को, कि मन ही हमारा मित्र होता है, मन ही क्या होता है, शत्रु होता है। अब भगवान भी देखो, भगवान ने भी सीधा ही कह के मन मनाओ, अपना मन मेरे में लगाओ, कि भगवान जानते हैं कि जब तक इसका मन नहीं लगेगा फिर ये क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। कि किसी भी क्रिया जो भी कार्य आप करते हैं पहले मन करता है ना, जैसे मन करता है कि आज हमको सिनेमा देखने जाना चाहिए, राइट, ये मन करता है ना। लेकिन जिसका मन कृष्णा कांसेस में था वो ये नहीं सोचेगा, वो सोचेगा हमको आज मंदिर दर्शन करना चाहिए, ऐसा सोचना, सकारात्मक सोच उसके आ जाएगी। कि मन तो मन ही आपको माया में ले जाता है और मन ही कृष्ण की ओर लेके जाता है। तो हमारी जो स्थिति है तटस्था शक्ति की है ना, इसलिए जो आत्मा है हम लोग क्या है, जीवात्मा, वो तटस्थी कि वो किसी के जिसका बड़ा भारी हो जाता है उसी ओर घूम जाता है ना। तो माया में तो हम है ही, लेकिन हमें इस माया से निकल करके किसमें लगाना है, कृष्ण को। इसलिए भगवान ने कहा है मन मनाभाव, अपना मन मेरे में लगाओ। भगवान ने ये नहीं कहा कि तन मनाभाव, भगवान ने तन की बात नहीं कि शरीर की बात नहीं कि मन मनाभाव, इसलिए कि जब मन लगेगा तभी आप शरीर से भगवान की सेवा में लगेंगे। एक करें कि तन से, मन से, धन से भगवान की सेवा की जाती है, ये ध्यान रखिए। तो लेकिन भगवान मन की बात करते हैं कि भगवान जानते हैं कि इसका अगर मन लगेगा तभी तन लगेगा, अगर मन नहीं लगेगा तो तन से हम कैसे सेवा करेंगे। तो इसलिए भगवान बड़ी गंभीरता से कि मन मनाओ, अपना मन मेरे में लगाओ। अगर एक बात भगवान का मंगल आरती आने में, जप करने में, कथा सुनने में, सुनाने में, सेवा करने में मन लग गया तो आप सेवा कैसे कर, तन से ही करेंगे, तन से ही आएंगे मंगल आरती के लिए। तो जब मन लगता है तो शरीर अपने आप दौड़ने लगता है। इस रहस्य को समझिए, भगवान इसीलिए मन की बात करते हैं कि भगवान जानते हैं जिस दिन इसका मन मेरे में लग जाएगा ये दौड़ा दौड़ा आएगा और फिर धन भी लगाएगा, फिर वो धन भी देता है। देखो बड़े बड़े सेठ खोल करके धन देते हैं, क्यों, उनका मन लगता है। प्रभुपाद बोलते थे है ना, पर बोलते कि फिर माइंड गोस वेयर मनी गोस देयर माइंड गोस। जो बिजनेसमैन होता है जहाँ धन देता है ना, उसकी भक्ति उल्टी शुरू होती है, जाते कैसे, धन से शुरू होती है। क्योंकि बिजनेसमैन के पास धन बहुत होता है, तो हमारे भक्त जाते हैं उसे धन लेके आते हैं, मेंबर बनाते हैं। एक बार जब धन कर दे करके मेंबर बन जाता है तो जानते हो क्या सोचता है, देन माइंड गोस, प्रभा वेयर मनी गोस देन माइंड गोस। जो बिजनेस होता है पहले धन जाता है फिर उसका माइंड जाता है, क्योंकि जहां उसका धन जाता है उसका माइंड वही जाता है। वो क्या करेगा, सोचेगा, देखो हमारे पंजाबी बाग के भक्त लोग आए थे 25,555 लेके गए हैं है ना, जाके देखना चाहिए वो क्या करते क्या है ना, बार बार बुलाते रहते मंदिर है ना, क्योंकि अब पैसा दिया है इसलिए उसका मन इधर किया है, भाई पैसा दिया है तो मन उसका इधर आ रहा है, ऐसा होता है। क्योंकि भगवान चाहते किसी न किसी तरह से तो मेरी ओर आए, भगवान सुन इन किन प्रकार ना, भक्त चाहता है कि चाहे मन से, चाहे तन से, चाहे धन से, किसी न किसी प्रकार से एक हमारे मंदिर में आना चाहिए। एक बार मंदिर में आ गया तो बाकी सब सिस्टम अपने आप सही हो जाता है। लेकिन भगवान ये चाहते हैं कि अब उसका मन लगे। अब प्रभुपाद जी ने यही किया, हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा सबका मन मोह लिया, और जो जिसका मन लग गया वो तन से धन से जो है भगवान की सेवा में लगे, और सब फिर तन्मय हो जाते हैं, सब तन मन धन मिल करके अब प्रभु जी की सेवा में क्या हो जाते हैं, लग जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये पति व्रता और पत्नी व्रता जो नियम है वैदिक शास्त्रों के, ये तभी हम इसलिए खंड करेंगे जब हमारी इंद्रियां क्या रहेंगी, कंट्रोल रहेंगी। इंद्रिया तभी कंट्रोल होंगी जब हमारा किसमें लगेगा मन, भगवान मन लगेगा। अब भगवान मन लगाने की विधि क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो बस इस पूरा सारांश है कि हमें अपना मन भगवान लगाना चाहिए, अर्थात जो भक्ति योग का जो प्रोसेस चैतन्य महाप्रभु ने हमारे परंपरा में दिया गया, अगर इसका हम पालन करेंगे तो निश्चित रूप से जो हमारी स्त्रियां हैं वो पतिव्रता रहेंगी और जो पुरुष हैं वो पत्नीव्रता रहेंगे। कहने का मतलब कि सब अपना अपना जो नियम है शास्त्र अनुसार का पालन होगा। ये पालन तभी होगा जब हमारा मन शुद्ध होगा, भगवान की सेवा में लगा रहेगा, तभी समाज सुधर सकता है, तभी चातुर्वर्ण में आश्रम का पालन हो सकता है। कि केंद्र में कौन आते हैं, कृष्ण आते हैं। अगर हम कृष्ण मानव भावित रहेंगे तो समाज का सिस्टम अपने आप सुधरता चला जाएगा। तो हम सब की जिम्मेदारी ये है कि ये जो संदेश है इसका प्रचार हम बाहर के लोगों में करें। आप जानते हैं कि लोगों को पता ही नहीं, कभी लोगों में इतनी गलतफहमी है कि अगर हम प्याज नहीं डालेंगे तो टेस्ट ही नहीं आएगा खाने में। सच है नहीं सच, लोग ऐसा बोलते हैं। अगर हम प्याज ही नहीं डालेंगे तो टेस्ट, तो हमको बोलते हैं कि आप हमारे मंदिर में आइए, हम आपको राजभोग खिलाएंगे, छप्पन भोग खिलाएंगे, हमारे रेस्टोरेंट में आइए, रेस्टोरेंट हम भी तो रन करते हैं, आइए बिना प्याज का हम छोले बनाते हैं, राजमा बनाते हैं इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं बिना लहसुन प्याज के, देख कितना आनंद आता है, राइट। माता जी लोग आप खुद जो बनाते हैं देखिए, कोई जरूरी नहीं कि ये हमारा बहुम है, क्योंकि हमको शिक्षा ही नहीं दी गई, हमको एक शिक्षा नहीं दी कि हमको क्या खाना नहीं खाना, जो खाना है वही, जो देखा वही खाना है। ये तो जो बकरी होती है ना, बकरी बकरी कुछ भी खा जाती, पता है आप सब, बकरी एक ऐसा पशु होता है जिसका दूध सबसे उत्तम माना गया है निरोगी, क्योंकि बकरी कोई भी पौधा खा जाती है, पौधा कड़वा हो, तीखा हो, कसेला हो, जानते हैं ऐसा क्यों होता है कि उसके जिह्वा में जो स्वाद लेने की गंधी होती वो नहीं होती, उसकी जीवा टेस्टलेस होती है, उसकी जीवा में किसी चीज का टेस्ट लेने का वो गंधी नहीं है, उसको हर चीज एज इट इज लगता है, मीठा हाँ वो मीठा, मीठा कड़वा तीखा उसको फील नहीं होता है। जैसे हम जीवा में रखेंगे तो लगेगा जैसा उसका टेस्ट होगा हमको पता है, लेकिन उसको टेस्ट का पता नहीं चलता कि उसको टेस्ट का जीवा है, उसकी जीवा में वो चीज नहीं है। इससे जो चीज पाती वही खाती है। आप बकरी देखेंगे सब हर पौधा जंग सब खा जाती है और उसको डाइजेस्ट, इसीलिए उसका जो दूध बनता है सबसे गुणकारी होता है कि हर पौधा खा लेती है, जितना आयुर्वेद के पौधे हैं वो सब खाती है, तो उसका जो दूध बनता है आयुर्वेद के सबसे अच्छा उत्तम माना गया है। इससे कभी कभी डॉक्टर वैध होते थे, बकरी का दूध पीने को बोलते थे, बकरी दूध पिलाओ बच्चा ठीक हो जाएगा, होता था टेस्टलेस। ऐसे होते हैं, जीवा पर कंट्रोल करना सबसे बड़ी कला है। जीवा पर कंट्रोल कर लेंगे, जितने व्रत हैं अपने आप क्या रहेंगे, ठीक रहेंगे, हर व्रत ठीक रहेगा, किसी भी प्रकार व्रत हो, पर जीवा पर कंट्रोल करना सबसे बड़ी कला है। हमारी इंद्रियां नियंत्रण में रहेंगी सब पालन होगा, नहीं तो आप किसी भी आश्रम रहो इंद्रिया कंट्रोल नहीं है, चाहे आप ब्रह्मचारी बनकर रहो चाहे सन्यासी बनकर रहो, आप देखते नहीं कितने साधु बाबा भी गिर कर जेल में चले जाते हैं, है ना, सन्यासी होकर के लोग गिर जाते हैं, है ना, वो व्रत नहीं धारण कर पाते। तो किसी आश्रम में प्रवेश करना अलग बात है, लेकिन व्रत धारण करना ये अलग बात है। इसके लिए इंद्रियों पर कंट्रोल करना सबसे, कोई भी आश्रम हो कोई भी वर्ण हो, इंद्रिया अगर आप कंट्रोल है तो हर आश्रम आपके लिए क्या है, आसान आश्रम है, चाहे ब्रह्मचारी हो चाहे गृहस्थ हो चाहे वानप्रस्थ हो संन्यास। अगर आपकी इंद्रिया आपके कंट्रोल नहीं है तो आपको किसी आश्रम रहो गिरना है। आप सुनिए, तो आप सबसे अनुरोध है कि इंद्रियों पर कंट्रोल करने की कला सीखनी चाहिए। यह तभी संभव है जब हम भक्ति प्रोसेस में अपने आप को लगाएंगे। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आजकल तो सब इसका उल्टा हो रहा है, जो जी बताया गया हम सब जानते हैं, सब इसका उल्टा हो रहा है, बहुत विचित्र स्थिति हो गई। इसलिए हम सब भक्तों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जो हमारी माता जी आप लोग हो, आपकी जिम्मेदारी है स्त्रियों को समझाने का, जो हमारा पुरुष वर्ग है आपकी जिम्मेदारी है पुरुषों को समझाने का। लेकिन आप तभी समझा सकते हैं जब आप खुद समझेंगे। अगर हम खुद नियम का पालन नहीं करेंगे, दूसरों को उपदेश देंगे, कोई मानेगा नहीं, राइट। तो इसलिए हमें खुद कड़ाई से भक्ति का पालन करना चाहिए, नियम का पालन करना चाहिए और दूसरों का, क्योंकि अगर हम गृहस्थ आश्रम में रह करके हम खुद ही पत्नी पत्नी से लड़ते रहेंगे, आप लड़ते रहेंगे, राइट, तो हम दूसरों को क्या शिक्षा दे सकते हैं। लोग क्या कहेंगे, देखो साधु करके है ना, ये खुद लड़ रहा है हमें शिक्षा देता है, कोई मानेगा नहीं, है ना। तो इसीलिए अगर हम गृहस्थ आश्रम में हैं तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए कि पहले तो हमको नहीं लड़ना चाहिए आपस में, है ना, अपनी गृहस्थी ठीक से चलानी चाहिए, तभी हम दूसरों को क्या कर सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं। तो किसी भी आसन रह करके हमें आसन के द्वारा क्या करना है, प्रचार करना है। हरे कृष्ण। ग्रंथ आसन भागवतम की जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की।